نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير لا تحزن don't be sad day number 9 اللہ تعالی ہم سب کو ایک بہت ہی خوبصورت سا پیغام دیتے ہیں اس میں کہ زندگی کے ہر غم کو پیچھے ڈال کر صرف ایک فکر لگا لو اور وہ کیا ہے کہ میری آخرت کیسی ہوگی. جس نے یہ غم لگا لیا دنیا کے غم ہوتے ہوئے بھی اس کو غم محسوس نہیں ہوں گے. آج ہم قرآن پاک کی جو آیت لیں گے اس موقع پہ وہ ہے جس میں ایک اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر واقعی دنیا میں اس کا پتہ چل جائے تو انسان کبھی بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا غم نہ منائے. اور وہ ہے ایک ایسی خوشخبری جو انسان کو اپنے بعد بھی دوسرے آنے والوں کی خبریں دیتی ہے. حقیقت یہ کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. جس طرح زندگی پر ایمان ہے اسی طرح موت پر بھی ایمان ہے. زندگی پر ایمان کی دلیل تو خود زندگی ہے جہاں پر میں بسر کر رہے ہیں, لیکن موت پر ایمان ایک ایسا ایمان ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی انسان موت کا انکار نہیں کر سکا. حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم اور اسی طرح سے ہر ایک. اللہ کو نہ ماننے والا بھی موت کو ماننے پہ مجبور ہے. وجہ صاف ظاہر ہے کہ دن رات اس کی دلیلیں ملتی ہیں, اور خاص طور پہ آج کل وبا کے دنوں میں تو ایسے لگتا ہے کہ کان پہلے سے ہی منتظر ہوتے ہیں کہ اب کیا اور اب کون اور اب کی کس کی باری آئی. حالانکہ موت ہمیشہ ہی بتائے بغیر آتی ہے اور پوچھے بغیر ساتھ لے جاتی ہے. لیکن موت میں سے ایک موت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شہادت کی موت کہتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے سورۃ آل عمران آیت 170 میں ہے, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس سے خوش ہیں, اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں, مراد یہ ہے کہ شہید ہو کر وہ ان میں شامل نہیں ہو سکے, ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی کچھ نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. شہداء کے ضمن میں قرآن پاک کی آیت آپ کو مجھے اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اگر زندگی کو بے غم کرنا چاہتے ہو تو شہادت الناس کا کام کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ بالآخر شہادت کی موت دے گا. ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگوں کو شہید ہونے کا شوق تو ہوتا ہے, لیکن ایک حقیقت پسندی کی بات کروں کہ پچھلے چند سالوں میں یہ لفظ بولتے ہوئے بھی لوگ خوف زدہ ہونے لگے. جب سے لفظ جہاد بدنام ہوا, پہلے تو مائیں دعائیں دیتی تھی اللہ تجھے شہادت کی موت دے, آج لفظ شہید ہونے سے پہلے ہی دل میں ایک ایسا نگیٹو تصور ڈال دیا گیا کہ اسلام جنگ و جدال کا دین ہے. ہم اس وقت اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے, کبھی کی جا سکتی ہے, یہ موضوع بھی اہم ہے, لیکن یہ آیت اس بات کی خبر دیتی ہے کہ جو لوگ ساری زندگی شہادت الناس کا کام کرتے کرتے اس دنیا سے جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کی موت کو بھی زندگی کہتے ہیں. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات, تو شہید کو اپنے پیچھے سے بعد میں اسی رستے میں جان دے کر آنے والوں کی خبریں ملتی ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں آپ خود ہوں اور آپ کی دوست, آپ کی پیاری, آپ کے پیارے نہ ہوں تو آپ کا دل لگا رہتا ہے کہ وہ کب آئیں گے. کبھی کسی شادی میں گئے ہوں تو گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں کہ کس راؤنڈ ٹیبل پر آپ کو اپنے پیارے مل جائیں. تو آپ کے میرے لیے آج اس آیت میں سے سبق یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے شہید بن جائیں. آپ کو مجھے بھی لوگ حضرت ابو ہریرہ کی طرح زمین پہ چلتا ہوا شہید کہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ ابو ہریرہ تو علمی شخصیت تھے, لیکن جب اللہ کے راستے کے غم اور فکریں لگ جاتی ہیں نا, تو جو کام لوگ تیر تلوار پکڑ کر کرتے ہیں وہی کام اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے قلم پکڑوا کے کر لیتا ہے. تو اس راستے پہ چلتے جائیے, خود علم سیکھنا اور پھر اس کے بعد سیکھنا کہ سکھاتے کیسے ہیں, اور اس کے بعد پھر سکھانا, اور اسی طلب میں زندگی سے چلے جانا ये ज़िंदगी शहादत की ज़िंदगी है। हत्ता के तालिब इल्म घर के बिस्तर पे भी दुनिया से जाता है तो अल्लाह ताला उसकी मौत को शहादत की मौत कर देते हैं। आपको मुझे बहुत ज़्यादा इस पे सवाल जवाब नहीं करने चाहिए, फलां शहीद के नहीं, कोरोना से मरने वाले शहीद के नहीं, और इसी तरह से जहाज़ के क्रैश में जाने वाले चले गए, ये बात एक अलग चीज़ है। लेकिन इस वक्त गमों का रुख बदलिए। अभी तक हम जो कुछ भी इस सीरीज़ में पढ़ चुके और ख़ास तौर पे इस लास्ट नशिस्त में, ज़रा सा उनका नाम ले लेते हैं क्योंकि बार बार इन टिप्स का सुनना और इसी तरह डिस्कशन में इसमें शामिल होना और फिर बहुत देर इसे एक नाम के ऊपर नज़रें जमा रखना हमारे दिलो दिमाग के आइनों में इन चीज़ों को डाल देगा। तो जो चीज़ हमने इससे पीछे पड़ी थी, लोगों की हरकतें देखकर परेशान ना हो, और ये जो शुरू का 2 या 2.5 मिनट का सेशन होता है ना, पिछले सबक का खुलासा, ये पिछला सबक मिस करने वालों के लिए एक इंसेंटिव भी होता है कि आज का तो सुन लीजिए लेकिन आपने पिछला भी सुनना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अपने हालात के मुताबिक इस सीरीज से फ़ायदा ले रहा है। मुझे तो नहीं पता कि आपने फ़ायदा कितना लिया, लेकिन ऐसी गवाहियाँ बहुत सी हैं कि जहाँ लोग इससे फ़ायदे ले रहे हैं। फिर इसी तरह जिस चीज़ की वजह से आप गमगीन हैं, इसकी कदरों कीमत तो जानी है। खामखा अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी को सिर्फ चंद लोगों के गम की वजह से गमनाक कर ले। जब तक आप लोगों से अच्छा सलूक करते हैं, इस बात का गम ना कीजिए कि लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह कान में बुरी बात पड़ने पर रंजीदा ना हो, क्योंकि हसद एक कदीम मर्ज है। मतलब अमूमन हमारे इर्द गिर्द जो बातें होती हैं और हमें अपने खिलाफ जो बातें सुननी पड़ती हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह हसद भी होती है। हर एक को तो ना कहिए जो भी आपसे बुरी बात कहे, कुछ लोगों की आदत भी होती है, आदतन भी बुरे होते हैं, कुछ का कल्चर ऐसा होता है, कुछ का अखलाक ही बुरा होता है। लेकिन अमूमन जानते बूझते जब लोग आपके खिलाफ बात करते हैं, तो उस वक्त मान लीजिए कि वो हसद का एक मर्ज है। फिर इसी तरह से मसाइब पर सब्र कामयाबी का रास्ता है जी। जितना सब्र करेंगे उतना आगे जाएंगे। लिख लीजिए कि सीढ़ियाँ बन जाते हैं गम जब आप उस पर मुस्तकिल चढ़ते जाते हैं, और एक दिन फिर कामयाबी आपके कदम चूमने लगती है। ये ना देखो कि लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, ये देखो कि वो अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं जी। ये भी एक बड़ी खूबसूरत टिप है। इतना कुछ देने वाली हस्ती की ना कोई माने, तो आपकी मेरी कोई ना माने तो क्या गम, और इतनी बड़ी हस्ती की मर्जी से ना कोई जिए, तो आपकी मेरी मर्जी से कोई क्या जिएगा। फिर इसी तरह तंगी रिस्क से ना घबराएं, इसलिए कि रिस्क की तंगी तो बहुत छोटी तंगी है। दुआ कीजिए कि कब्र की और हशर की तंगियों से अल्लाह बचा दे। तुंदिये बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, मुखालफतों की आंधियों में उकाब ज़्यादा ऊंचे उड़ते हैं। आप एयरप्लेन पर सफ़र करें तो हवा की स्पीड आपकी फ्लाइट के हमवार होने और उसके वक्त पे या वक्त से लेट पहुंचने पे बहुत असर डालती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी मुखालफतों की हवाएं चले, तो मान लीजिए कि अल्लाह ताला आपको ज़रा सा और ऊंचा उड़ाना चाहता है। इसी तरह दूसरों का लुबादा ना ओढ़िए। हर एक को हर चीज़ नहीं सजती। अपना रंग बनाइए, दूसरों का रंग लेकर चुरा कर उसको दूसरों के सामने पेश करने की बजाय। इसी तरह गोशा नशीनी और बंदे पर इसका मुस्बत असर। एक कोने में बैठ जाइए जब लोग हॉल रहे होंगे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी गुजारने का एक बड़ा खूबसूरत तरीका देगा। आपको पता है कि अभी तक आप 71 टिप्स ले चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तबारक अल्लाह। अल्लाह ताला आपको और मुझे इन सारी चीज़ों के बाद अब अगली चीज़ लेने और उन चीज़ों को फिर हमारे गमों की दूरी का जरिया भी बना दे। तो आज की पहली टिप है, शदायत से ना घबराएं। शदायत, शदीद, शिद्दत, एक्सट्रीमिज्म, एडवर्सिटी, कोई भी नाम ले लीजिए। ज़िंदगी में आम तरह के हालात अमूमन रहते हैं। दो किस्म के हालात कभी कभी रहते हैं, यानी आप पेंडुलम को जहन में लाइए। मिडल में तो अमूमन ही होते हैं, खुशी, गम, रिलैक्सेशन, कुछ कुछ कुछ। लेकिन एक तरफ पेंडुलम को राइट साइड पे पूरा ऊपर कीजिए तो ये एक्सट्रीमली हैप्पीनेस है। अचानक खुशी, इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल बनती दिखती है। और इसी की तरह दूसरी तरफ अगर ले जाएं इसको लेफ्ट साइड पे, तो गम, और ऐसा गम के जो बहुत ही एक्सट्रीम का, और अल्लाह ताला आपको मुझे हर ऐसे गम से बचा दे। तो जब ऐसे गम और ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द आती हैं तो उस वक़्त इंसान बहुत आपे से बाहर होता है, और ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त होती है। ये क्या, ये कैसे, ये कब? यही वो वक्त होता है जिस वक्त आपने ख़ुद को ये यकीन दिलाना है कि मेरा रब मेरे साथ है, जो भी दुनिया वाले मेरे साथ कर रहे हैं या कोई कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ रही है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा रब जो मेरे साथ है। तो आज से अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का यकीन रखिए कि बड़ी मुश्किल बड़े दर्जों के लिए आती है। एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, जब आप सेकंड क्लास में थे तो मैथ का पेपर क्या था? आई डोंट थिंक सो कि 2 + 2 से बढ़कर कुछ था, ज़्यादा ज़्यादा होगा तो 2 × 2 हो चुका होगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स की फील्ड में चले गए आगे से आगे, तो आप जब CA कर रहे थे तो वो पेपर क्या था? FSC में अगर किसी ने मैथ पढ़ा तो उसका पेपर क्या था? क्या दूसरी क्लास का पेपर मुश्किल और आसान था या अगले दर्जों पे? बस छोटे 2 + 2 के सवाल के बाद आपको तीसरी क्लास मिल गई और आप बड़ी क्लासों में आए हैं, तो आपका पेपर भी मुश्किल, आपका इम्तिहान भी बड़ा, और इसके बाद फिर आपके दर्जे भी बढ़े, और जिस साल डिग्री मिलनी होती है वो साल कैसा होता है? बात समझ गए? तो छोटे इम्तिहान के बाद छोटी तरक्की और बड़े इम्तिहान के बाद बड़ी तरक्की होती है। बस मुतमईन रहिए, कोई नहीं चाहता कि मैं उम्र से पीछे रहूं। आप 10 साल के बच्चे को जाकर 6 साल के बच्चे की क्लास में बिठा दें, दिल ही नहीं लगेगा, वो कहेगा वहाँ सब छोटे छोटे लोग हैं और जो पढ़ाया जा रहा है ना वो मुझे आता है। बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने में इंसान बस दफ़ा इतना शेर हो चुका होता है कि छोटी छोटी मुश्किल को तो वैसे ही हैंडल कर लेता, कहता छोड़ो छोड़ो, पहले भी आई थी, गुजर गई है, ये भी गुजर जाएगी। तो ये जो फीलिंग है ना, वो जिसको कहते हैं कि मुश्किल से हो खूगर तो मिट जाता है गम, आपकी भी ज़िंदगी में यही असूल होना चाहिए। खूगर होना सीखिए, छोटे छोटे गमों को तो समझें कुछ ना, और बड़े बड़े गमों को बहुत छोटा करें। आज के दौर में जूम इन जूम आउट का लफ्ज़ बड़ा कॉमन है, जूम इन कर लीजिए, जूम आउट कर लीजिए, कभी चीज़ बड़ी होके दिखती है, कभी छोटी दिखती है, कभी दूर की चीज़ करीब कर करीब की चीज़ दूर दिखती है। बस जितनी बड़ी तकलीफ़ आए उसको जूम आउट करते जाइए और आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ महसूस होने लगेगा। और जितनी बड़ी शिद्दतें आती हैं ना, इंसान के इर्द गिर्द से क्लीनलीनेस भी हो जाती है, छट जाते हैं वो लोग जो सिर्फ आपकी तारीफ़ें कर करके आपसे चाय पीना चाहते थे। और इसी तरह से एक और बात नोट कीजिएगा कि जितनी बड़ी शिद्दत आती है ना गम की, तकलीफ़ की, आपके अंदर का पोटेंशियल बाहर आता है। एक ख़ास प्रेशर पड़ता है ना तो कार्बन डायमंड में बदलता है। अगर बोझ ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, तो कार्बन डायमंड में ना बदले। तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में प्रेशर इसलिए लाते हैं कि आपका जूस निकले। ऑरेंज को निचोड़ेंगे तो जूस निकलेगा, जैतून को निचोड़ेंगे तो ऑयल निकलेगा। आपको मुझे कोई निचोड़ता है अगर, अल्लाह ही अपनी रहमत से कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई गम हम पे डाल देता है, उसके बाद देखिए अंदर से निकलता क्या है। वो होता है आपका एक्सट्रैक्ट, वो आपका कंसंट्रेट लेवल होता है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर इतना कुछ था। हम हमेशा से ही सोचते मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वही बात है, ब्लेंडर में ना डले तो ऑरेंज को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो ज़िंदगी में शदीद हालात में अख्लाक अच्छा रखिए, रवैये अपने चेक कीजिए, और हमेशा होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट पे रहें। कभी भी तकलीफ़ तकलीफ़ नहीं लगेगी, अल्लाह ताला फिर आसान भी कर देता है। ऑपरेशन होता है तो जिस्म काट देते हैं और पूरे अंदर से चीज़ें इधर उधर कर करा के फिर सी भी देते हैं, एक एहसास तक नहीं होता मरीज़ को। इसके बरक्स बैठाए हुए मरीज़ की बाजू में एक इंजेक्शन लगाया जाए तो उसकी भी दर्द काफ़ी होती है। फ़र्क किस बात का है कि ऑपरेशन से पहले बेहोश कर दिया जाता है। वो कहते हैं हमें पता नहीं, बस कुछ ऐसे ही सुंघाया था और उसके बाद जब होश आई तो हम रूम में आ चुके थे। बस मेरा लिए इतनी ही मिसालें जो हैं ये इस बात को समझाने के लिए काफ़ी हैं कि जब आप इंजेक्शन की तकलीफ़ बाहोश बर्दाश्त करते हैं तो चुभती है, लेकिन ऑपरेशन की तकलीफ बेहोशी की वजह से नहीं चुभती। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि मशक्क़तें और शदायद दिल को मजबूत करते हैं, गुनाहों को धोते हैं, गरूर का खात्मा करते हैं और तकब्बुर को मिटाते हैं। इनसे गफलत दूर होती है, याद दहानी हासिल होती है, लोगों की हमदर्दी और सालेहीन की दुआ मिलती है। इनसे अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह वाहिद का हार के सामने सपुर्दगी का जज्बा बढ़ता है। इनसे फौरी तंबीह और खबरदारी हासिल होती है, नसीहत मिलती है, सब्र से आजजी पैदा होती है और इसी तरह पसमर्दगी में सवाब की उम्मीद बनती है। यानी जब बहुत आप पेल हो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, तो वहाँ आपको खबर मिलती है कि अल्लाह ने आपके लिए इस तकलीफ़ में अजर रखा है। आप ताज़ियत की दुआ देखिए, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के सामने रखी थी जब उनके बच्चे का इंतकाल हुआ था। इन्ना लिल्लाहि मा हज़ा व लहू मा अता व कुल्ल शैइन इंदहू बि अजलिन मुसम्मा फल तस्बिर वल तहतसिब। ये तहतसिब की कैफियत पैदा होती है, क्या सवाब करो और अजर की उम्मीद रखो और अल्लाह ताला से मुलाकात की तैयारी होती है। दुनिया की तरफ रुझान से इंसान का दिल हटता है, रूहानी लुत्फ बढ़ता है, बड़े गुनाह पर पर्दा डाल दिया जाता है और बड़ी बड़ी खताएं मुआफ़ कर दी जाती हैं। बात वाज़े, कैसे इंसान जब बड़े गम और सदमे से गुजरता है तो समटाइम तो माइंड ही माउफ हो चुका होता है। तो क्या देखा कि जिंदगी की शिद्दतों से शदायत से ना घबराइए, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। मसलन, मशक्क़तों से दिल मजबूत होता है, पहला फ़ायदा, और मशक्क़तों को सहकर ही लाडों में पले मुसब बिन उमैर इस काबिल हुए कि शहादत के मुकाम पर पहुंचे। अल्लाह के नबी की आंखें गीली हो जाती थी सहाबी का हाल देखकर, कि जब जिस्म पर कांटे लगाकर कपड़े को जोड़ते थे, और आपने कहा कि ये वो मुसब था कि जब दौरे जाहिलियत में पहन ओढ़ कर अपनी सवारी यानी घोड़े पर सवार होके निकलता तो लोग इसको देखते, इसको आइडियलाइज करते। आज इस्लाम ने मुसब की यह हालत कर दी कि इसके जिस्म पर कपड़े भी पूरे नहीं, और यही मुसब थे कि जब इनकी रुख्सती का वक्त आया, गज़वे उहद में इनकी शहादत होती है, शहदाए जोहद है उनकी तो शान जो थी, मुसब बिन उमैर की तो क्या शान थी कि कफन भी पूरा नहीं है। सर छुपाते हैं तो पाँव खोलते हैं, पाँव खोलते हैं तो सर छुप जाता है। कहा अल्लाह के नबी क्या करें, कहा सर छुपा दो, पाँव पे असगर घास डाल दो। इतनी शिद्दतें आप पे मेरे पे कभी आईं इस रास्ते में, और ना आए क्योंकि हमारा ईमान नहीं है इतना। हम तो उससे बहुत पहले माजरत कर चुके थे, सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट्स नॉट कमिंग इन माई स्केजुअल, नहीं आज आई एम सॉरी आई नीड छुट्टी। हम तो उस वक्त छुट्टियाँ लेके अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके होते हैं अपने गुमान में, जब अल्लाह हमें बड़े दर्जे देना चाहता है। ज़िंदगी का एक असूल लिखिएगा, आप उसको अपना कहते हैं जो आपको दुख में साथ ना छोड़े। इस्लाम उसको अपना कहता है जो अपनी ज़िंदगी की सारी ऊंचियों नीचियों और प्लस माइनस के बीच में रहते हुए इस्लाम को नहीं छोड़ता। मैं खड़ा हूँ अब सब जाते हैं तो जाए, उहद की बात आ गई तो उहद का मैदान ही जहन में ले आइए, क्या शान है उन 12 लोगों की जो अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ अपनी ड्यूटी पे खड़े रहे, उन्होंने दरा नहीं छोड़ा। तो रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। फिर एक और फ़ायदा देखिए कि तकलीफ़ों से गुनाह धुलते हैं। सादा कपड़ा धोएंगे तो हल्का सा सोप डालकर उसको 15 मिनट पे लगा दीजिए, धुल जाएगा। लेकिन जब कपड़े पे दाग बहुत हों, धब्बे, तो सिर्फ सोप काम नहीं आता, कुछ ब्लीच भी डालना पड़ता है, फिर उसको गर्म पानी से बॉयल भी करना पड़ता है। आपके मेरे जिस्म पर, हमारी रूह पर, हमारी ज़िंदगी में कहीं भी किसी एंगल में भी बहुत सारे गुनाहों के धब्बे लगे होते हैं। अल्लाह ताला गमों की भट्टी, दुखों की भट्टी, तकलीफ़ों की भट्टियों में डाल डाल कर साथ खुद ही सब्र की तौफीक भी देता जाता है और उसके बाद फिर गुनाहों से पाक करता है। सही मुस्लिम की रिवायत 65-63 आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से, एक मोमिन को जब भी कोई कांटा चुभता है या इससे बढ़कर कोई तकलीफ़ होती है तो अल्लाह ताला इसकी वजह से इसका एक गुनाह मिटा देता है। तो फिर गम कैसा, ये तो आपकी धुलाई हो रही है। खुद को मशीनों में डलवाते, पार्लर्स में जाकर क्या कुछ नहीं कराते कि दाग धब्बे दूर हो जाएं, चेहरे के बाल दूर हो जाएं, स्किन ग्लो करने लगे, शाइन आ जाए। तो जिस तरह ज़ाहरी खूबसूरती के लिए आप पैसे दे दे कर और वक्त दे दे कर ये करते हैं, अल्लाह ताला शदायत में डालकर आपको अंदर से इस तरह चमका देता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मसाइब से तकब्बुर ख़त्म हो जाता है, इंसान आजिज़ बनता है। जैसा कि आजकल ये पिछले 2-3 माह के हालात में देखिए, बड़ी बड़ी तनी हुई गर्दनें ज़रा सी खम तो हुई, करें क्या, बंदा कुछ कर नहीं सकता। फिर इस तरह देखिए गफलत ख़त्म होती है, इंसान अपने गुनाहों पर पशेमान होता है। एक और फ़ायदा लीजिए, अल्लाह ताला से कुर्बत बढ़ती है। अल्लाह ताला का कुर्ब जब मिल जाए तो उसमें जो गम होते हैं ना, वो खुशियों से भी ज़्यादा अजीज़ लगते हैं। कहते हैं ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाल दिया गया, कितने भी दिन थे वो आपको मुझे क्या लगे, लेकिन कौल उनकी तरफ मंसूब है कि कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से सलाम आता था, या कुछ और भी आता होगा। और तत्नज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो कुरान भी कहता है जो इस्तकामत के दर्जे पे खड़े रहते हैं, अल्लाह ताला फिर उनको अपनी रहमत से फरिश्तों की तरफ से खुशखबरियाँ भी दिलाता है। फिर इसी तरह वो मुश्किलें जो अल्लाह से करीब कर दें, उन राहतों से बेहतर हैं जो अल्लाह से गाफिल करते हैं। और क्यों अल्लामा इकबाल खुद अपने बेटे को ये जुमला कहते हुए दिखते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस तरह नहीं। अल्लाह अकबर, बाप तो बेटे को ये दुआ कभी ना दे अगर उसको ना पता हो कि इन मुश्किलों के पीछे क्या क्या खैर के खजाने छुपे हुए हैं। फिर इसी तरह से देखिए कि जब इंसान इन मुश्किलों में होता है ना, तो एक चीज़ जहन में रखे, और वो क्या, नंबर एक, मुसीबतों से इंसान के लिए नसीहत का दर वाह होता है। कैसे, इंसान फिर ज़रा सा दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार तो हो जाता है, अदरवाइज़ तो बाज़ दफ़ा तकबर ही तकबर होता है, हमें कोई कुछ ना कहे। इसी तरह दुनिया के गमों की वजह से दुनियावी लज्जतें ख़त्म हो जाती हैं, और इंसान उखरवी नेमतों को याद कर कर के इन के लिए तमन्ना और कोशिश करने लगता है। जब दुनिया ज़रा सी हल्की होने लगती है ना, तो फिर हमें आखरत की फ़िक्र तो लगती है। थोड़ा सा वक्फ़ा लीजिए खुलासे के लिए, अभी तक जो कुछ सुना है इसके मुताबिक मेरा अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और याद रखिए कि रंजो बला का खौफ ना करें, कि रंज से इबादत में जोफ आएगा, वह आपको जिहाद से रोक देगा, ना मुरादियों, नाकामी, सुए जन और नहुसत में मुबतला कर देगा। हुजनों कुलक नफ्सियाती अमराज की जड़ हैं, ये असबी आलाम का सरचश्मा है, गम आते हैं तो मसल्स भी पुल होते हैं, और इज़्तिराब वसवसों और जवाल की निशानी है। कुरान आपके पास है, जिक्र है, दुआ है, नमाज है, ज़कात सदका खैर के काम और मुफीद और फल लाने वाले अमाल हैं, फिर घबराना किस चीज़ से। यानी खुद को ऐसे कहा करें, आईने में खड़ा करके ना, आईना के सामने तो ये जुमले बोला करें जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरा कुरान मेरे पास है। और इसी तरह से खाली और बेकार रह कर रंजो बला के शिकार न बने, नमाज पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, मुतालिया करें, लिखें, काम करें, आने वाले लोगों का इस्तकबाल करें, दूसरों के पास जाएं, गौर व फिक्र करें और दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आजजी और फरोतनी से अपने रब को पुकारें, वो ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इतात उसके लिए खालिस करते हुए दुआ करें, कह दो कि तुम्हारे रब के बहुत से प्यारे नाम हैं, इसे अल्लाह से पुकारो या रहमान कहकर पुकारो। अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल में ये बात कहकर आपको मुझे सोचने की दावत दी है, गालिबन सूरत मरियम की आयत है। तो क्या सीखा अभी तक की इस बात में, पहली बात है कि हुजन और खौफ में मुस्तकिल मुब्तला ना रहें, इबादत की चाशनी ख़त्म हो जाएगी, नफ्सियाती अमराज जड़ पकड़ेंगे। आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह आपका जिक्र करेगा। अपने मसलों में उलझा हुआ इंसान जिहाद नहीं कर सकता, और नमाज, कुरान, तस्बीह, दुआ, सदका सब अल्लाह के जिक्र की इकसाम है, यानी कभी कोई एक किस्म पकड़ लीजिए तो कभी दूसरी। और अगली टिप लीजिए, खुश रहने के कायदे सीखिए। हकीकत यह है कि खुश रहने के कायदे होते हैं, जिस तरह के गम में रहने के भी कुछ कायदे होते हैं। चंद चीज़ें नोट कीजिए, 1 2 3 करके बोलूँगी। पहली बात, ये ध्यान में रखें कि अगर आप सिर्फ आज पर नज़र ना रखेंगे तो जहन बट जाएगा, मामलात डामाडोल हो जाएंगे, अंदेशे और तफक्कुरात बढ़ जाएंगे। फिर इसी तरह से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, मैं आपको सोचने का मौका दे रही हूँ, इसी बात को तो यूं कहा गया कि सुबह कर लो तो शाम का इंतज़ार न करो, शाम कर लो तो सुबह के इंतज़ार में मत रहो। हमें तो सुबह उठ के फिक्र लग जाती है कि रात को क्या पकाएंगे, और अभी खा पी के फारिग नहीं हुए थे तो कहते हैं अब सुबह क्या करेंगे, कल क्या पकाएं। हमारा बहुत बड़ा गम खाना पीना भी है। इसी तरह एक और टिप लीजिए कि माजी को पूरे तौर पर भूल जाएं, जो गुजर गया इस पर गौरव फिक्र बेवकूफ़ी है और जुनून है, क्रेजीनेस। फिर इसी तरह मुस्तकबिल पर तवज्जो ना करें कि वो आलमे गैब की बात है, जब तक वो आ ना जाए इसके बारे में पेश की फिक्रमंद ना हो। फिर इसी तरह से तनकीद से उखड़ ना जाइए, साबित कदम रहिए, और ये जान लीजिए कि तनकीद से आपकी कीमत बढ़ेगी। ये जो लोग तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, वो भी अक्सर दुखी रहते हैं, क्योंकि लोगों की तो आदत है तनकीद करेंगे, और कुछ जगह तो तनकीद करनी फ़र्ज़ है ताकि आप सुलझें। आप अपने बच्चों पे तनकीद ना करें तो वो कभी दांत साफ करें, और सो ऑन। तो आप तनकीद से घबराइए नहीं। फिर इस तरह पांचवी टिप यह है कि अल्लाह पर ईमान लाएं और अमल सवाले ही बेहतरीन और खुशगवार ज़िंदगी है, इसका यकीन कीजिए। फिर इसी तरह जो इत्मीनान और सुकून और राहत चाहता हो, इसे अल्लाह का जिक्र इख्तियार करना चाहिए। हम सब का जिक्र कर लेते हैं, उसको फ़ोन कर, उसको पूछ किधर है, वो नहीं फ़ोन उठा रहे, और गुस्सा भी करेंगे और उसको नहीं पुकारते जो कहते हैं अम्मे युजीबुल मुस्तर इज़ा दाहु। फिर इसी तरह से याद रखिएगा इस बात को कि जितना अल्लाह का जिक्र होता है उतना दिल जिंदा रहता है, जैसे मछली पानी में जाकर जिंदा होती है। फिर इस तरह एक बंदे पर यह लाजिम है कि हर शय कज़ा कदर से होती है, इस पर यकीन करें। किसी की तरफ से शुक्रिया का इंतज़ार ना करें, और अपने आप को इसका आदी बनाएं कि मुश्किल से मुश्किल काम करूंगी। फिर इसी तरह एक जुमला खुद को कहिए, जो हुआ हो सकता है कि वो बेहतर हो, यानी मुझे तो नहीं लग रहा कि बेहतर है, तो मेरी इतनी अकल भी तो है नहीं। आप देखिए कि जितने भोले बनेंगे और जितने बच्चे बनेंगे उतने गम दूर होंगे। आप इतने भोले बन के रहिए, अच्छा ये मेरी बात है, अच्छा, यानी हर चीज़ को सर पे सवार करने वाला जो बंदा होता है ना, उसको खुश रहने का ये कायदा नहीं आता जो हम पढ़ते ही जा रहे हैं, दोहराते ही जा रहे हैं। एक एक बात 10 दफ़ा भी कहनी पड़े तो मैं कहने को तैयार हूँ, क्योंकि एक दफ़ा अगर एक ने सुनी तो 10 दफ़ा शायद 10 लोग उसको सुनकर उससे फ़ायदा उठा ले। फिर इसी तरह से जो नेमतों पर शुक्र अदा करता है और उस पर गौर व फिक्र करता है, उसके गम दूर हो जाते हैं। और अपने आपको एक जुमला तो कहिए, जो कुछ मेरे पास है इसके साथ मुझसे बहुत बेहतर लोग भी हैं जिनके पास वो नहीं है। मुराद क्या है कि जो कुछ आपके पास है इसके साथ आप बहुत से लोगों से बेहतर हैं। बाद में हिसाब किताब किया गया तो हम तो इस काबिल भी नहीं थे, ये तो अल्लाह की रहमत और फजल है। एक वक्त से दूसरा वक्त आसान है, ये भी कहिए खुद को। और मुसीबत के वक्त दुआ ज़रूरी है। मसाइब बसीरत के लिए मरहम और कल्ब के लिए क़ुव्वत होते हैं, और तंगी के साथ आसानी भी है। छोटे मोटे उमूर अपने ऊपर हावी ना करें, आपका रब बहुत माफ़ करने वाला है। और 3 दफ़ा खुद को कहें, गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें। इसी तरह सामान्य ज़िंदगी रोटी पानी और साया है, इसके अलावा की फ़िक्र ना करें। यानी अगर ये 3 नेमतें सिर्फ मिली हुई है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। आसमान में आपके लिए रोज़ी है, और वो है आज जिसका आपसे वादा किया जा रहा है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। तो जब है मेरे हिस्से का उधर तो मुझे क्या गम। फिर सर जिस हादसे का ज़्यादा अंदेशा होता है वो होता कोई नहीं, और मुसीबत ज़दों में आपके लिए नमूना है। और अल्लाह ताला जब किसी कौम को पसंद करता है इसे मुबतलाए मुसीबत करता है, ये भी हदीस। ये सारे जुमले हम दोहरा रहे हैं, याद भी रखने हैं और याद करने भी हैं। एक होता है याद करना, किसी ने कहा आपने मुझे याद किया, मैंने कहा नहीं, क्यों? इसलिए कि याद तो उसको किया जाता है जो कि भूल जाता है। तो याद करने से उठिए याद रखने के दर्जे पे। हम कभी कभी अल्लाह को याद करते हैं फ़र्ज़ कुरूनी की सूरत में, अल्लाह कहता है मुझे याद रखो। जो सिर्फ याद कर रहा होता है ना वो जाकिर है, और जो याद रखता है हर वक्त वो मुत्तकी है, हर वक्त उसको याद रखिए। इसी तरह मुसीबत में मसनून दुआएं करें, बेकार ना बैठें, संजीदा और मुफीद काम करें, यूं ही ना बैठें। और इसी तरह अफवाहों और फजूल बातों को छोड़ दें और इनकी तस्दीक ना करें। फिर एक और टिप है कि कीना और इंतकाम की ख्वाहिश आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगी, हरीफ और दुश्मन को नहीं। तेजाब जिस डब्बी में डाला होगा उस डब्बी को ही खा जाएगा। इसी तरह जो तकलीफ़ भी पहुंचती है वो गुनाहों का कफारा है, अब आपने इतने आदाब सीख लिए हैं, खुश हैं? ये कायदे खुश रहने के आप सीख चुके हैं, करें क्या? ज़रा सा एक बड़ा सा आज लिखिए, अपने जहन की तख्ती पे एक स्लाइड बनाइए, आज बिग आज, इसके पीछे गुजरा हुआ कल और आगे आने वाला कल, पीछे है यस्टरडे, आगे है टुमारो। यस्टरडे को भूल जाइए, टुमारो के अंदेशे ना पालिए, आज जिसको प्रेजेंट कहते हैं इस पे फोकस कीजिए। आज आज ये है एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट, नाम भी देख लें तो आपको इसका मतलब समझ में आने लगे। फिर जो कुछ भी हमने सीखा, इन सारी चीज़ों को क्लिक करते जाएं। अभी जितनी टिप्स मैंने आपके सामने रखी ना, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये दोहराई हो रही है हमारी, इस पे क्लिक 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 करें और फिर अपना अमल चेक करें। मसलन उस सर के साथ युसर है, क्या वाकई मेरा दिल इसको मान गया? क्लिक कर दीजिए और आप देखते हैं कि मुसलमान के लिए तकदीर का हर फैसला बेहतर है। तो शुक्र कीजिए जो मिल गया, और जो खो गया उस पर सब्र कीजिए। क्लिक, जो कुछ आपके पास है बहुत सबसे बेहतर है। तो बहुत से लोग तो तरसते हैं कि वो आप जैसी ज़िंदगी गुजार सके, बन गई आपकी ये सोच? क्लिक, उसर के साथ यूसर है, तो मुश्किल वक्त आता है तो आसान भी आएगा। क्लिक, और मुसीबतों में दुआएं करें, ये मुसीबतों का हल भी और अल्लाह से कुर्ब का जरिया भी। क्लिक, और मसाइब से इबरत लें, अपनी या किसी की मुसीबत से सबक लें और मजबूत हों पहले से ज़्यादा। हर मुश्किल के बाद आप पहले से ज़्यादा मजबूत हों। यहाँ एक जुमला देने लगी हूँ आपको, जम बना ले। हम तो कहते हैं ना, गमों ने तोड़ दिया, मुसीबतों ने कर दिया, और बाद कहते हैं हाय हाय, फलां बच्ची का गम बाप की जान ले गया, नऊज़ु बिल्लाह, कितना बड़ा दावा। नहीं, लिखिए, गम छोटे इंसान को खा जाता है और बड़े इंसान को बना जाता है। जी, तो खुश रहने के कवायद, छोटी छोटी चीज़ों पर हिम्मत ना हारें, वहम ना पालें, अक्सर वहम पूरे नहीं होते, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, मुसीबत ज़दाओं को देखकर अपने हाल पे शुक्र करें। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है तो आप आधी दुनिया से ज़्यादा अमीर हैं। सख्त से सख्त आजमाइश अल्लाह के पसंदीदा बंदों की होती है, और आसमान से रोज़ी मुकर्रर है, इसलिए परेशानी का फ़ायदा नहीं। मुसीबत में ना फारिग रहें, बल्कि मुफीद काम करें, मसनून दुआएं मांगें, और ख़ुद को यकीन दिलाइए इस बात का कि दिल में कीना या इंतकाम रख कर मैं अपनी ही सेहत ख़राब करूँगी। तकलीफ़ों में भी शुक्र अदा करें कि गुनाह चढ़ रहे हैं, और हदीस ले लीजिए सही मुस्लिम 6570, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि ये आदम की औलाद के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को दूर करती है। तो क्या सीखा हमने इतनी सारी टिप्स लेने के बाद? मुसीबतों से घबराना नहीं, ये बेहतरी के लिए आती हैं। मसाइब से गफलत दूर होती है, दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, इसलिए बुरा नहीं कहना। मुस्तकिल हुस्न व मलाल की कैफियत में रहने की बजाय जिक्र इलाही करना है मुस्तकिल तौर पे। सिर्फ आज पर फोकस करना है, गुजरे हुए कल को भूलना है और आने वाले कल के अंदेशे नहीं पालने। मसाइब में सब्र, दुआ और अच्छे दिनों की उम्मीद से काम लेना है। और इसके बाद अगली टिप पे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेगा कि हम बार बार कर रहे हैं, ज़रूरत है, क्योंकि गम भी बार बार आते हैं और वक्त के साथ साथ हम ग्रोथ करते जा रहे हैं ना। तो कुछ चीज़ें जहनी तौर पे बचपने की हालत में सीखी थी, वही चीज़ें जब आप बलूगत की कैफियत पे आकर सीखते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगली टिप क्या है कि रंजो गम क्यों जबकि तुम्हारे पास 6 चीज़ें हैं। जी, अरबी का एक मुहावरा है, अलफर्जु बाद शिद्दती, किताब है बल्कि, और लिखने वाले कहते हैं कि एक हकीम मुबतलाए मुसीबत हुआ, यानी बड़ा बाहिकमत इंसान था, उस पर कोई मुसीबत आ गई, इसके भाई इसके पास आए और इजहार हमदर्दी करने लगे। उन्होंने कहा, मैंने 6 चीज़ों को मिलाकर दवा बनाई है। उन्होंने कहा, वो क्या है? अब भी क्या, अच्छा ये कोई कोरोना वायरस का कावा तो नहीं आ गया? किसी ने एक क्लाइंट भेजी कि कोरोना की वैक्सीन डिस्कवर होने या इजाद होने या बनने तक हम पाकिस्तानी लोग जंगल की हर जड़ी बूटी का कहवा बना के पी चुके होंगे, लेकिन मास्क फिर भी मुंह पे नहीं रखेंगे। जी, तो ऐसा ही कोई कहवा देखते हैं क्या है, ये कह लीजिए रूहानी कहवा है। पहली चीज़ डालनी है आपने उस माजून में अल्लाह पर भरोसा। दूसरी चीज़ मेरा ये जानना कि जो मुकद्दर है वो होगा। और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ सब्र है। और चौथी जड़ी बूटी है, मैं सब्र ना करूँ तो कर भी क्या सकती हूँ, घबरा कर ही क्या होगा। और पांचवी बात ये डाल दीजिए उस माजून में कि ये भी मुमकिन था कि जिस हालत में अब हूँ इससे भी बुरे हाल का सामना होता। और छठी चीज़ ये कि एक वक्त सख्ती है तो दूसरे वक्त इससे छुटकारा भी तो होगा ना। रोज़ा रखते हैं तो खोलते भी तो हैं ना, बीमार होते हैं तो फिर सेहतमंद भी तो हो जाते हैं ना। ये छह चीज़ें घोल घाल के पी जाइए। आप कहेंगे अच्छा उसके बाद फिर पानी के साथ खाना है कि क्या? हमारे कल्चर के कुछ ऐसे ही जोक्स भी हैं। एक शख्स जो मोटापे का शिकार था तो किसी ऐसे हकीम ने उसको एक नुस्खा दिया हल्के फुल्के खाने का। तो वो पूछ रहा है कि अच्छा ये सब कुछ खाना खाने से पहले खाना है या इसके बाद खाना है? अल्लाह अकबर कबीरा। आप पर ज्यादती हो या आपकी कोई इहानत करे यानी बेइज्जत करे या गालम गलोच करे या जुल्म करे, गरंज ना कीजिए। क्यों? इसलिए कि इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला कहते हैं, मोमिन मुतालबा नहीं करता, ना इताब करता है, ना हाथापाई पर उतर आता है। यानी चाहता नहीं है कि उसके साथ ये सारे गलत मामले हों, और अगर कभी ऐसे हो जाएं तो फिर वो झगड़े भी नहीं करता। देखिए ये चीज़ें आपको मुझे दी बेस्ट करेक्टर दे रही हैं। अगर हम इस पे अमल भी करें लिखने के साथ साथ, तो फिर दोहरा लीजिए करण जो गम क्यों आते जबकि आपके पास ये छह चीज़ें हों। मैंने ऐसा ऐसा बोल दी हैं, आप ख़ुद को सिखा लें। अल्लाह पे भरोसा, मुकद्दर पे राजी, सब्र, इसके अलावा हल कोई नहीं। और जो हालत है इससे बुरी हालत भी तो हो सकती है ना, इस बात का यकीन। और सख्ती के बाद राहत का वक्त, इन्ना माल उसरी युसरा। और आल इमरान 140, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अगर दुनिया में मोमिन के लिए राहत ना भी मुयस्सर हुई तो कब्र में जाते ही सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अल्लाह के नबी जब निजा की सख्तियों में थे तो प्यारी बेटी फातिमा को यही कह रहे थे कि बेटी आज के बाद तेरे बाप को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही गुनाहों से पाक थे। मोमिन के लिए भी यही बात है कि दुनिया में जब उस पर तकलीफें आती इतनी आती हैं कि वो पाक हो जाता है, हत्ता के उसके जिस्म पर एक गुना भी नहीं रहता। तो दुआ करें कि अल्लाह दुनिया में ही माफ़ कर दें, ऐसा ना हो कि किसी मुश्किल से मुश्किल में डालकर पाक करे। और एक रिवायत नोट करें, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला तहो से रिवायत है मिश्कातुल मसाबीह में 1542, मोमिन की मिसाल खेती की सी है जिसे हवा झुका देती है। और मोमिन को जो मसाइब आते रहते हैं, जबकि मुनाफे की मिसाल सनोबर के दरख्त की तरह है जो हरकत नहीं करता हद तक इसे काट दिया जाता है। अब एक सवाल मेरे पास ज़रूर आ जाएगा कि सनोबर नाम रखना चाहिए कि नहीं। तो देखिए इधर समझिएगा ना, वो दरख्त अपनी जगह पे खड़ा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इतना स्ट्रांग दरख्त होता है कि मौसम की शिद्दतों का इस पे ज़्यादा असर नहीं होता।